اور اس کے بعد پھر سورت مدثر، وہ کیا تھی؟ یا ایہا المزمل، اور یہ کیا ہے؟ یا ایہا المدثر. اللہ اکبر. آپ ایک جملہ لکھیے، قیام فی اللیل اور یہ قیام فی النہار. داعی دین کی زندگی ان دو چیزوں سے جڑی ہوتی ہے. راتوں کو اللہ کے آگے کھڑے ہو جائیے، دن میں اللہ کے بندوں کے سامنے کھڑا ہونے کی طاقت آ جائے گی. تو سورت مدثر شروع ہوتی ہے. سورت مزمل میں قیام اللیل کی بات ہوتی ہے اور اس سورت میں قیام النہار کی. یہ بھی اسی دور میں نازل ہوئی. شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک داعی دین میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے. پہلی شرط یہ ہے کہ نام اللہ کا بلند ہو، اور دوسری بات داعی کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، بدبو نہیں آنی چاہیے، پسینے کی، پیاز کی، ادرک کی، لہسن کی. اور یہ بات تو آپ سب کے لیے، میرے لیے اتنی ضروری ہے جتنی شاید کسی کے لیے نہ ہو. اور دوسری بات، جہاں کپڑوں سے مراد کردار ہے، اس پر کوئی دھبا نہیں ہونا چاہیے. کریکٹر سرٹیفکیٹ، اس پر کوئی شک نہ کرے، کوئی نظر نہ ڈالے ایسی، کوئی جملہ ایسا نہ بولو کہ لوگ تم پر سے اعتبار کھو دیں. بہت مشکل ہے داعی دین بننا، اللہ تعالیٰ اس اعتبار کو کبھی ضائع نہ کرے. یاد رکھیے، جب کہنے والے کی بات پہ شک نہیں ہوگا یا کہنے والے کی بات پہ اعتبار نہیں ہوگا، تو بات جتنی مرضی خوبصورت کیوں نہ ہو، لوگ شک ہی کریں گے. پھر آئے 6 سے 7 میں احسان اور صبر کی بات آئی ہے. اللہ کے نبی کا 23 سال تک جہاد ہے. سب سے پہلے محبتوں کا جہاد تھا، نفرتوں کا جہاد تھا، لوگوں کا سامنا کیا، معاشرے سے جہاد کیا، سب چلا گیا، لیکن اللہ کا کام نہیں چھوڑا. اللہ کے نام کو بڑا کرنا تھا. سوچیے ذرا اس کو، کس کے نام کو بڑا کرنے کے لیے دین کا کام کرنا ہے؟ اللہ کے نام کو. تو اسی طرح آج میں اور آپ اللہ کو اکبر کہیں گے. اپنی زندگی میں مشکلات آتی ہی تب ہیں، وظیفے پڑھنے اور تسبیح پکڑ کر بات کرنے سے نہیں آتی. اللہ سے دعا ہے کہ دین کے معاملے میں اگر مشکل آ جائے تو اس پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب کوئی بڑی مخالفت آ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، رب کے لیے صبر کرنا سیکھے. پھر آیت 9 سے اگلی چند آیات میں قیامت کے مناظر ہیں اور اس شخص کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو اللہ کے نبی کا دشمن تھا. آیت 38 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے اعمال اللہ کے پاس گروی ہیں، جیسا عمل کرے گا ویسا ہی بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا. اور ہم سب کے لیے عمل کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. آیت 42 سے 49، 42 سے 49 میں کیا ہے؟ اگر اسلام کو کوئی جھٹلائے، قرآن کو جھٹلائے، آپ کے پڑھنے پڑھانے کو جھٹلائے، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تو اس کا دل کھول دے. مانے گا نہیں جب تک اللہ دل میں نہ ڈال دے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جتنا ان چیزوں کو سامنے رکھتے جائیں گے اتنا ہی آپ کی دعوت کے اندر زور پیدا ہوتا جائے گا. سورت میں ہمیں تبلیغ کا جو ایک انداز مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ خاص حد تک بات کرنے کے بعد پھر جانے دو، سوچنے دو اور شعور کو بیدار کرو. ایسی بات کرو جس سے یہ خود ہی سوچنے لگ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا صبر دے. آپ دیکھیے کہ اگلے کے شعور کو بیدار کرے، ایک جملہ لکھیے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے انا ایگو اور ایک ہوتا ہے شعور یا ضمیر. دعوت میں ضمیر کو جگائیے، نہ کہ انا کو. انا سویا ہوا شیر ہوتی ہے، سویا رہے تو اچھا ہوتا ہے. جب داعی دین دوسروں کی انا کو اٹھا دیتا ہے نا، تو سمجھ کے بھی نہیں بات سمجھتا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. اس کے بعد ہے جی آگے سورت قیامہ. اس میں قیامت کے کچھ مناظر ہیں، اور یہاں اب دنیا کی محبت کم کی جائے گی. دعوت میں بھی یہ چیز بہت قابل غور ہے کہ لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت کم کی جائے، جس کی وجہ سے وہ دین کی طرف نہیں آتے. یعنی بعض لوگ جو ہیں وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے دین کی طرف نہیں آتے. اس سورت کی آیت 1 میں اللہ تعالیٰ ملامت والے نفس کی قسم دلا کر یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. آج 26 سے اگلی چند آیات میں اللہ تعالیٰ انسان کی موت کا منظر بیان کر رہے ہیں. انسان کی سب سے پہلے ٹانگوں سے جان نکلتی ہے. کبھی کسی کو دیکھا ہے نزا کی حالت میں؟ آیت 31 سے آگے ایسے لوگوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے جنہوں نے حق کو جھٹلایا. اور آیت 36 میں صدا کا لفظ ہے. सुधा उस ऊँट को कहते हैं जिसकी नाक में नुकेल नहीं होती, जिधर जी चाहे उधर चला जाए। तो अल्लाह ताला इंसान को कह रहे हैं कि इंसान ये सोचता था कि दुनिया में आया है और कोई इसको पूछेगा ही नहीं। फिर अगली ही आयत में अल्लाह ताला इंसान की तख्लीक के मराहिल बयान कर रहे हैं, तो क्या वो इस पर कुदरत नहीं रखता कि दोबारा ज़िंदा करें? बताइए। बिल्कुल रखता है। तो इस सूरत में दावत इल्लाह के नाते से जो हमने देखा, दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाली जाए और क़यामत के आने का यकीन दिलाया जाए। आखिर में दो सूरतें बची, एक का मौजू है जन्नत सूरह दहर और एक का मौजू है जहन्नम सूरत मुरसलात। दावत के अंदर ये दो चीज़ें बहुत अहम हैं, या तो जन्नत की रग़बत दिला दो या जहन्नम से डरा दो कि ये कैसी होने वाली है। सूरह दहर शुरू ही में हमें इस बात पर गौर की दावत देती है कि जब हम पैदा नहीं हुए थे तो तब हम कहाँ थे। हल अताल अल इंसान हीन मिन दहर लम यकुन शय्यम मज़कूरा। हमारा तो कोई नाम भी नहीं जानता था, कुछ भी तो नहीं पता था हमारे बारे में। कल हमारा नाम फिर नहीं जानेंगे, एक दो नस्ल गुजर जाएगी लोगों को हमारे नाम भी नहीं याद होंगे। फिर अगली ही आयत में इंसान की पैदाइश की बात हुई कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, ताकि नबतली ही हम उसका इम्तिहान लें। और कितने ही लोग हैं जो ये समझते हैं कि अल्लाह ने हमें जो आँखें और कान दी हैं ये एक इम्तिहान है। पारे के आगाज़ में हमने सूरत मुल्क में देखा था कि ज़िंदगी एक आजमाइश है और यहाँ किस लिए पैदा किया गया। जहाँ भी आजमाइश होती है वहाँ फिर इख्तियार होता है। कमरे इम्तिहान में बैठे तो सवालात दे दिए जाते हैं और कई इख्तियारात हैं और इसमें सही जवाब को मुंतखब करना होता है, यानी तरह तरह की चॉइसेस होती हैं। लेकिन यहाँ ऐसी चॉइसेस तो नहीं, लेकिन दो चॉइसेस हैं, एक है शुक्र और एक है कुफर। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरं व इम्मा कफूरा। दो रास्ते हैं, शुक्र करने वाला बने या कुफर करने वाला बने। हम सब अपने आप को चेक करें कि क्या मैं अपने आप को हर लम्हे एक ऐसे कमरे इम्तिहान में मौजूद पाती हूँ जहाँ सवालात की एक लंबी फहरिस्त है, कहीं खुशियों के सवाल, कहीं गमियों के सवाल, कहीं नेमतों के, कहीं महरूमियों के, और इसके जवाब में हमने हाँ या ना करना है। समझ गया ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, चूज़ कीजिए। कुछ सवालों में तो बहुत लंबी डिटेल्स लिखनी होती है ना, नहीं, यस नो। और ये सूरत आखिर तक यही अंजाम दिखाती है। यहाँ आयत 4 में अल्लाह ताला ने बस इतना ही कहा कि काफिरों के लिए जंजीरें और तौक और दहकती आग तैयार कर रखी है। क्योंकि इस सूरत का मौजू जन्नत है तो अगली आयात में जन्नत की नेमतों को बयान किया जा रहा है कि ये अच्छी चॉइस को मुंतखब करने वाले लोग हैं। और इन आयात में हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मैं किस चीज़ को मुंतखब करती हूँ। इस सूरत में अल्लाह ताला जन्नतियों के आमाल को भी बयान कर रहे हैं जिनकी वजह से ये लोग जन्नत के वारिस बने। अल्लाह ताला इस सूरत में जन्नत की झलक दिखाता है कि लोगों, जन्नत की तलब पैदा करो, तुम जा किधर रहे हो। जन्नत की कीमत का जिक्र भी है, रात के सजदे और दिन की तस्बीह भी है, सब्र भी है और शुक्र भी है। हर एक अपने आप से पूछे क्या मेरा जन्नत में दाखिला हो चुका। कितने आराम से बैठे हैं हम बग़ैर दाखिलों के। और आयत 27 में हमारे लिए मुहासबे का नुक्ता कि इस आयत में किसकी बात हो रही है। कहीं मैं तो नहीं जो सिर्फ़ इस दुनिया की चीज़ों को पाना चाहती हूँ। इस आयत में आजीला का लफ्ज़ है जिसको आज के दौर में परेशानी कहते हैं। हर चीज़ में जल्दी, एंग्जाइटी, हरीनेस, हर चीज़ में आज जल्दी का कल्चर है। फास्ट फूड क्या है, फास्ट क्या है, आजीला, फास्ट आजीला को कहते हैं। क्विक ड्रिंक, मिनटों में तैयार, झटपट, लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं, ड्राइव थ्रू यानी गाड़ियों में सवार बैठे बैठे खाना खरीद लें, ये सारी सलाहत जो हैं ये सब आजीला का कल्चर है। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम किरदार इश्तहारात का है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ऐसी सारी चीज़ें करने वाले इतने भारी दिन को पीछे छोड़े हुए हैं। और आखिरी आयात में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुरान तो एक नेमत है तुम्हारे लिए। हम सब अपने आप से ये सवाल पूछें कि हम आजीला के दिल दादा हैं या आखिरा के। और फिर ये बात बहुत ज़्यादा अहम है हमारे लिए कि दुनिया भी तब ही मिलेगी जब अल्लाह चाहेगा, इसकी रज़ा के बग़ैर नहीं मिल सकती। इसलिए करो क्या कि अल्लाह को राज़ी कर लो। और आखिर में हम अपना मुहासबा कर लेते हैं कि आज इलाह का तलबगार हूँ या आखिरत का, जन्नत के कंगन चाहिए या जहन्नुम के तौक, जन्नत की महफिलें चाहिए या जहन्नुम के बदबूदार खाने चाहिए। मेन्यू कार्ड हर एक के हाथ में। और इसके बाद फिर सूरत मुरसलात शुरू की आयत में अल्लाह ताला क़्यामत के बारे में बयान करते हैं, वल मुरसलाती उर्फा फलासिफाती असफा वन नाशिराती नशरा। कस्मों से ये सूरत शुरू होती है कि ये कोई ख्वाब नहीं है, ये ज़रूर वाकई होगी। यहाँ हवा के तेज़ चलने की बात आई तो ज़रा हवा तेज़ चलती है या आंधी आती है तो फ़ौरन अल्लाह की याद आती है हमारे दिलों में। और इस सूरत से पता चलता है कि हक़ को झुठलाने वालों के बारे में अल्लाह ताला क्या क्या खराबियां बयान फरमा रहे हैं। दुआ करें अल्लाह हमें हक़ को झुठलाने वाला नहीं बल्कि हक़ को मानने वाला बना दे। फिर इसी तरह आयत 25 से 27 तक हमारे लिए बहुत ज़्यादा गौर तलब आयात है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क्या हमने ज़मीन को समेटने वाली नहीं बनाया? जिससे पता चलता है कि अगर ज़मीन सिर्फ़ इस बात से इनकार कर दे कि मैंने किफ़ाता नहीं बनना, तो हम अपने मुर्दे कब्रों में दफन करते और ज़मीन उगल कर बाहर फेंक देती कि मैं नहीं रखती। जैसे पानी फेंक देता, आपको पता है कि समंदर में लाश डूबती नहीं है, तैरती रहती है, उसको निकाल कर बाहर फेंकते हैं। फिरौन की लाश भी तो बाहर फेंकी थी ना। अगर ज़मीन भी हमारे मुर्दों को ना लेती तो क्या हम ज़मीन पे चल फिर सकते? इतनी बू होती। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह हमारी कब्र को सुकून का ज़रिया बनाए। ज़रा सा सोचिए, इस ज़मीन का हम पर कितना बड़ा एहसान है और कितनों को ये ज़मीन अपने सीने पर बर्दाश्त कर रही है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बोझ से नहीं थकी। तुम अल्लाह के कामात से क्यों थकते हो? तुम कैसे बोझ समझते हो शरीयत को? और कहाँ से आता है ये मीठा पानी? इस ज़मीन की कोख से निकलता है। कभी सोचा इतनी खूबियों के मालिक और बिछी पड़ी तुम्हारे कदमों में कितनी आजजी से? कोई शौक़ नहीं इसको बड़ा बनने का? नहीं, मैं लोगों के सरों पर चढ़ूंगा। ऐसी इताअत चाहिए अल्लाह को बंदों से। अल्लाह को मतलूब है कि लोग तुमको कदमों से रोंद रहे हों और तुम इनको पानी पिला रहे हो। ये अख्लाक चाहिए, एक दाई दीन से यही रवैये मतलूब हैं उम्मत मुस्लिमा से, कि मीठे पानी बनो, लोगों के रवैयों के ताबे अपने अख्लाक को ना करो। कि लोग अच्छा करेंगे तो हम भी अच्छा करेंगे, वो बुरा करेंगे तो हम भी बुरा करेंगे। अल्लाह ताला हमें ऐसा ना बनाए। आयत 29 अगली आयत को पढ़ते वक्त तसव्वुर करने की ज़रूरत है, कैसी होगी जहन्नुम? बड़े बड़े महल्लात जितनी चिंगारियां हैं तो फिर शोले कितने बड़े होंगे। हम सब अपनी आंखें खोलें और ये मत भूलें, ये मत सोचिए कि ये आग सिर्फ काफिरों के लिए है। वो लोग भी जाएंगे जो हक़ को झुटलाते हैं। और इनकार करना क्या होता है? कि मैं ना मानूँ, मुसलमान हूँ, कहा जाए आओ नमाज़ पढ़ो और जवाब आए मैं ना मानूँ, अपनी फिक्र करो, मुझे ना कहा करो नमाज के लिए, ये मुसलमान का तरीका नहीं हो सकता। आयत 41 से 45 में अल्लाह ताला इन लोगों के बारे में बयान फरमाते हैं जो तौबा कर लेते हैं और गुनाह की बजाय नेकियों के मौके तलाश करते हैं, जो ये नहीं चाहते कि हम जहन्नुम का ईंधन बने। और आखिरी आयत शऊर को बेदार करने वाली बात है। अब इस कुरान के बाद कौन सा ऐसा कलाम है जिस पर ये ईमान लाएंगे? फबियी हदीसिम बादहू युमिनून। आपके मेरे लिए इस किताब को पढ़ने के बाद अगर हिदायत ना मिली तो किससे आएगी? इससे बड़ी डिग्री कोई नहीं है, याद रखिए। जिसको हिदायत लेनी है इसी से मिलेगी इंशाल्लाह। और कौन सी किताब है जिसको पढ़ने के बाद दिल बदलेंगे? और कौन सी किताब है जिसके बाद नाफरमानियाँ छूटेंगी, नेकियों को अपनाएंगे? ये तो आखिरी डिग्री है, इसके बाद कोई डिग्री नहीं। इतना कुछ पढ़ने के बाद ना तड़प भड़ी, ना गुनाहों का खौफ आया, ना नेकियों के इरादे हुए, ना अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के नाम पर लगाने का इरादा किया। या अब हम सब अपने आप से पूछें, कहीं मेरी बातें तो नहीं हो रही? फिर सुन लीजिए, इतना कुछ पढ़ने के बाद ना तड़प भड़ी, ना गुनाहों का खौफ आया, ना नेकियों के इरादे हुए, ना अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के नाम पर लगाने का इरादा किया, तो तुम बताओ वो कौन सी किताब है जिसको पढ़कर बदलोगे? फिर बताओ वो कौन सा कलाम है जो तुम्हारे दिल की बंजर जमीन पर ईमान के पौधे लगाएगा। ये सब हम अपने आप से पूछें। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम अपनी फ़िक्र करें और अल्लाह ताला हमारी आंखें खोल दे। तो ये था 29वां पारा। क्या सीखा इस पारे से? कि हमने अपने आप को बदलना है। दावत इल्लाह के रास्ते में निकलते वक्त दिल को बड़ा करके निकलेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत होगी और अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।